नोट: एक, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 48. दो, मोहन राकेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि, पृष्ठ 78. पृष्ठ 24. नई कहानी जिस स्थिति में है उसमें उसका स्वरूप काफी हद तक बदला हुआ है, क्योंकि आज का रचनाकार पूर्वाग्रहों और पारंपरिक स्वीकारों से मुक्ति चाहता है. कारण, पुराने कुएं का पानी मीठा और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तो हो सकता है, किंतु वह हर युग में नई उभरती पीढ़ी को भी वैसा ही उपयोगी लगे यह आवश्यक नहीं है. सरोवर का जल निर्मल कितना ही हो, कंकड़ी फेंकने पर उसमें अनगिनत लहरें भले ही उठ लें, किंतु उसकी कोई भी बूंद वैसा स्फुरण और संवेदन नहीं जगा सकती है जैसा कि झरने से छूटते पानी के किंचित स्पर्श से ही जग जाता है. इसके कारण और कितने भी हों, किंतु एक अहम कारण यह है कि प्रत्येक युग की दृष्टि अपने अनुकूल सृष्टि रचती है, उसे अपनी सर्जना से अधिक आश्वस्ति मिलती है. फिर आज जबकि साहित्यकार की चेतना शतगुणित होती हुई परिवेश के समूचे फैलाव को अपने भीतर समोती जा रही हो, तब तो समकालीन परिवेश की बाहों का सहारा लिए बिना एक कदम भी चल पाना असंभव होता है. यही कारण है कि आज का सर्जक परिवेश बोध की संवेदना को आत्मसात करके जी रहा है. वह अपने अंतस और बाह्य की असंगतियों, कटुताओं और अंतर विरोध जनित रिक्तताओं को झेल रहा है. जीने और झेलते जाने के इस क्रम में उसे आदर्श का मीठा जल भी बेस्वाद, अनुपयोगी और व्यर्थ प्रतीत होने लगा है. फलतः वह नए सिरे से व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों और व्यक्ति व समाज के संबंधों का न केवल पुनर्संवेषण कर रहा है, अपितु उन्हें एक नए अर्थ से भी जोड़ रहा है. यद्यपि ऐसा करते जाने में अनेक बाधाएं और खतरे हैं, किंतु वह नए मानवीय क्षितिजों की खोज के लिए खतरे उठाने को तैयार है. खतरों और बाधाओं के बीच चलते चलाते वह भटक भी रहा है और कभी कभी अटक अटक कर स्वयं को ही प्रश्न दृष्टि से तौल भी रहा है. उसने अपने भीतर की अनमापी गहराइयों के बीच से जो स्वर ग्रहण किया है वह एकदम निरर्थक नहीं है. उसकी सार्थकता ही यह है कि उसमें निरर्थकता भी एक मूल्य बन गई है. अर्थहीनता में सार्थकता की खोज व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों का नया संदर्भ और सामाजिक विषमताओं व विद्रूपताओं के बीच भी जीने की शक्ति प्रेरित कामना ही आज के कथा साहित्य में निरूपित हो रही है. यह निरूपण इस तथ्य का प्रत्यक्ष गवाह है कि आज की कहानी कल की कहानी से बहुत बदल गई है, बदलती ही जा रही है. परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहानी की वस्तु और दृष्टि भंगिमा में स्पष्टतः लक्षित की जा सकती है. कहानी के बीच व्यक्ति की शक्ति और सामाजिक कटुताओं का यह प्रक्षेपण साक्षी है कि आज कहानी सैद्धांतिक व बौद्धिक आवरण को चीर कर धरती के आग पानी को ही अपना धन समझ रही है. इसी से इसमें चित्रित व्यक्ति प्रेमचंद के पात्रों को घुलनशील वृत्ति पृष्ठ 25 की कैंचुल उतार कर विषमताओं, स्थापित व्यवस्था और समस्त अत्याचार ग्रस्त परिवेश के विरुद्ध अपने विश्वास का ध्वजारोहण कर रहा है. नई कहानी ने पूर्वाग्रहों से मुक्ति प्राप्त कर ली है. वह इंद्रधनुषी रंगों और कल्पना के सतरंगे आग्रहों से मुक्त होकर यथार्थ की ऊबड़ खाबड़ किंतु ठोस धरती पर आ गई है. उसमें पुराने व अव्यवहारिक मूल्यों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है तथा असमय वृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों का या तो नवीनीकरण किया है या उन्हें नए मूल्यों के प्रकाश के समक्ष मृत घोषित कर दिया है. आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह वास्तविकताओं की पहचान का युग है. कहानीकार में यह पहचान कविता की अपेक्षा अधिक तेजी से घटित हो रही है. यही कारण है कि कहानी लिखने की प्रेरणाएं भी असीमित हो गई हैं. हमारे चारों ओर बिखरे हुए जीवन का हर पल, हर संदर्भ और हर स्थिति कतिपय प्रभावों से आंदोलित हो रही है. सजग कहानीकार के पास इस सब को पहचानने की क्षमता है, गहरी अनुभूति है और अनुभव के उस यथार्थ को व्यक्त करने के लिए सशक्त शिल्प है. ऐसी स्थिति में जीवन का हर पल, हर संदर्भ और अपने आसपास का सब कुछ कहानी बनता जा रहा है. परिणामतः हम जहाँ पर दो पल विराम का सांस लेते हैं वहाँ एक कहानी कसमसाने लगती है। जिस राह से गुजरते हैं वहाँ पैरों के निशान एक करुण गाथा छोड़ जाते हैं। धरती के गर्भ में छिपा बीज जब अंकुरित होकर हवा में लहराता है तो उसका एक इतिहास लिख जाता है जिसे कहानी बनते देर नहीं लगती। इतना ही क्यों, वर्तमान परिस्थितियों में अनेक संकटों को झेलते मानव के चेहरे के भाव, अभाव, तनाव और सलवटों सभी में एक एक कहानी लिखी दिखाई देती है। आज का सचेतन कहानीकार जब लगातार रौंदी जाने वाली सड़क के दिल की धड़कन भी सुन लेता है तो फिर मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी के पसीने की बूंदों में, बीमारी और दर्द से पीड़ित मरीज की कराह में, अनेक संगतियों के बीच द्वंद्व और तनाव झेलते स्त्री पुरुषों में, निरंतर टूटते मानवीय रिश्तों में, किसी घायल गरीब और बेसहारा की विवशता में और किसी प्रेम के मारे असफल और पूरी तरह टूट चुके आदमी में छिपी कहानी क्यों नहीं बाहर आ सकती। आज की कहानी यही है, उसकी संवेदना यही है और उसका परिवेश भी ऐसी ही अनेक स्थितियों से संबद्ध है। एक, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र और अज्ञेय प्रेमचंद की पीठ पर एक एक करके उतरने वाले कहानीकार हैं। जैनेन्द्र और अज्ञेय ने मानवीय आंतरिकता के मनोविश्लेषणात्मक कहानियों के सहारे अभिव्यक्ति किया है। यशपाल में सामाजिक वर्ग, वैषम्य की भावना और पात्रों की मनोग्रंथियां का विश्लेषण करके मध्यकालीन बोध को तोड़ने का प्रयत्न दिखाई देता है। एक, डॉक्टर हरिचरण शर्मा, नई कहानी की संवेदना निबंध से, पृष्ठ 26। अश्क में सामाजिक भावना और वैयक्तिक जीवन प्रसंगों के आपसी संयोग से एक समीकरणात्मक मानवीय चेतना की विचारपुष्ट निर्धारणा और अभिव्यंजना दिखाई देती है। सामाजिक बोध की भूमिका पर विकास चेतना का स्फुरण और अभिव्यंजन अश्क, अमृतलाल नागर, चंद्रकिरण सोनरिक्सा, भैरव प्रसाद गुप्त, भीष्म साहनी और धर्मवीर भारती की कहानियों में उपलब्ध होता है। परिस्थितियों की जटिलता और विषमता ने जीवन बोध और उसके स्तर को भी बदल दिया है। इतना ही नहीं, मानवीय संबंध, रिश्ते नाते और पारिवारिक और वैयक्तिक संदर्भों में नई स्थितियां पैदा कर दी हैं। फलतः जीवन निर्वाह जटिल हो गया है। उसके लिए न केवल पति वरन पत्नी भी नौकरी के क्षेत्र में उतर रही है। कहीं कहीं यह भी हुआ है कि पति पत्नी की कमाई पर पल रहा है। इसके साथ ही कहीं सामाजिक दायित्व के निर्वाह अथवा दबाव के कारण लड़कियां नौकरी कर रही हैं। उनको इच्छाओं का रंगमहल परिस्थितियों के दबाव के कारण खंडहर होता जा रहा है। कभी वे अविवाहित होकर विवाहित का, कभी विवाहित होकर अविवाहित का और कभी प्रेम के नाम पर कलंकिनी बनकर ठुकराई हुई उपेक्षिताओं का जीवन बिता रही हैं। इतने पर भी उन्होंने आत्महत्या से अपने को बचाया है, प्राणघाती पीड़ा सहकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। अनेक रोजगार दफ्तर खुलने के बाद भी नई पीढ़ी का अधिकांश जीवन बेमतलब और बेरोजगार हो गया है। परिणाम सामने है, कॉफी हाउसों, टी स्टॉलों और सिनेमा घरों पर भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। भीड़ बढ़ रही है, उसका दबाव बढ़ रहा है और व्यक्ति अकेलेपन का बोझ लिए जीवन की रही सही सांसों को जैसे तैसे गिन रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दायित्व बोध बढ़ने के कारण व्यक्ति की विशेषताएं बढ़ रही हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से घटित हुई है और अभी भी हो रही है। कस्बाती जीवन जीने की आदि बुद्धिवादी व्यक्ति रोजगार पाकर भी महानगरीय जीवन की चकाचौंध और तड़क भड़क में खोता जा रहा है। एक ओर यह नगरीय जीवन है और दूसरी ओर वह अतीत है जिसकी स्मृतियां उसके मनोराज्य में कौंधती हुई उसे इंसानी रिश्ते से जोड़ती हैं। इस पीड़ा में, द्वंद्व में वह भटक गया है। व्यक्ति का निजीपन अनजाने महानगरों की भीड़ में आकर छूट गया है। उसे केवल ऊब, उदासी और अपरिचय के बीच रहना पड़ रहा है। विवशता की प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हो रही है। जो व्यक्ति कस्बाती जीवन को छोड़कर यहाँ आया है वह केवल व्यक्ति नहीं है, वह तो किसी का पिता है, किसी का पति है और किसी असहाय वृद्धा का बेटा है। ऐसी स्थिति में उसे अपने पीछे छोड़ आए परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी करनी है। व्यवस्था जुटाने की आशा लेकर आया हुआ यह व्यक्ति महानगरीय जीवन में आकर स्वयं अव्यवस्थित, पृष्ठ 27, होता जा रहा है। यह वह व्यक्ति है जो अपने किशोर काल में भावी जीवन के सपनों का संसार सजोए हुए था। उसकी कल्पना थी कि शिक्षा समाप्त करके वह जीवन को नई दिशा देगा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जीवन स्तर होगा और एक मनचाही आकर्षक पत्नी होगी। किंतु इस किंतु ने ही तो उसे प्रश्नों और समस्याओं के जंगल में भटका दिया है। यह तो था उसकी कल्पना का जीवन और जब उसे इसमें उतरने का अवसर मिला तो सारी स्थितियां उलट गईं। कल्पनाएं यथार्थ के ताप से तप कर न केवल झुलस गईं, अपितु उनके स्थिति तक एक प्रश्न बन गईं। स्थिति यह हुई कि उसका विवाह तो हुआ किंतु नौकरी न मिली और हर साल बाद वह अपने फ्रस्ट्रेशन को एक नए बच्चे के रूप में जन्म देता रहा। स्वच्छ मकान की कल्पना सीलन और बदबूदार अंधेरे बंद कमरों में बदल गई। उसकी पत्नी का सौंदर्य झुर्रियों में बदल गया और बच्चे सही परिवेश और पोषण न पा सकने के कारण न केवल दुर्बल हो गए वरन चिड़चिड़े भी हो गए। नौकरी मिली तो है किंतु सारे दिन दफ्तरी जीवन में सिर खपाते रहने के बाद जब वह घर लौटता है तो उसका दम घुटता है। बच्चों की मांगों और चीख पुकार से कान के पर्दे फटते दिखाई देते हैं। पुरुष पत्नी की खींच से भीतर ही भीतर घुलता जा रहा है। नतीजा यह है कि वापस अपने अतीत में लौट जाना चाहता है। वह व्यवस्था के परिवर्तन में परिवर्तन करना चाहता है और सारे जीवन तंत्र को नया रूप देना चाहता है किंतु कुछ हो ही नहीं पाता। वह विवश भाव से इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। यह टूटन, यही विवशता और ऊब व निराशा नई कहानी में प्रतिरूपित हो रही है। एक दूसरी स्थिति शिक्षित दंपत्ति भोग रहे हैं। दोनों का समान शिक्षित होना, नौकरी होना और कुछ व्यक्तिगत कारणों से इच्छाओं के विपरीत जीते चले जाना, तनाव में जीना, एक दूसरे को अपने अनुपयुक्त समझकर नए ढंग से जीने का प्रयत्न आदि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कुछ घर टूटते हैं तो कुछ नए बनते दिखाई देते हैं। बच्चे पिता से छूट जाते हैं और पति पत्नी एक दूसरे से। स्त्री पुरुष के संबंधों की यह स्थिति इतनी दारुण और यातनामयी हो जाती है कि दोनों अलग अलग रहकर भी जी नहीं पाते। संबंधों के बीच आई यह दूरी फिर एक नया आकर्षण पैदा करती है। दोनों के बीच एक नया सेतु बनते बनते रह जाता है। वे अलग अलग स्थितियों में जीते हुए एक दुर्निवार पीड़ा का टूटन झेलते हुए जीवन के अंतिम रूप में समा जाते हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों की यह स्थिति और परिणति पूरी कचोट भरी संवेदना के साथ नई कहानियों में आकार पा रही है। जीवन की विसंगतियों में उपजा यह पीड़ा बोध न केवल मोहन राकेश की कहानियों का विषय है अपितु समूची कथा पीढ़ी द्वारा चित्रित कहानी यात्रा का एक अनिवार्य सोपान है।